अविज्ञेयं दुरास्तं चन्दके चता.
The supreme truth exists both internally and externally. In the moving and non-moving, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. This verse is from the 13th chapter of the Bhagavad Gita. The supreme truth. Krishna explains that there is no truth superior to him. Nattaparataram nanyat kinshit asti dananjayat mai sarabhamitam protam sutre manikana iva. That the supreme knowable truth defies all material conception.
कह रहे हैं कि भगवद गीता के इस श्लोक से कि भगवान सब जगह पर है, अंदर और बाहर है. तो महाराज इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये जो परम तत्व है वो दोनों अंदर है और बाहर भी है.
Material world, every living being is bound under the laws of nature, which confine one within the dualities of material existence.
हर जीव जो है इस दुनिया में प्रकृति के नियम में है और इसके कारण वो जो है द्वंद्वों का अनुभव करता है.
हाँ, but Krishna here explains both internal and external.
यहाँ पर कृष्ण भगवान बताते हैं कि वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं.
He is within everything and without of everything.
वो हर चीज के अंदर भी हैं और उसके बाहर भी हैं.
He is in the moving and the non-moving.
वो चर में भी हैं और अचर में भी हैं.
In other words, he is beyond the power of the material senses to see or to know.
दूसरे शब्दों में वो इंद्रियों के परे हैं.
Although far, far away, he is also near to all.
हालांकि वो बहुत दूर हैं, फिर भी वो बहुत करीब भी हैं.
The perception of Krishna is only when he, by his sweet will, reveals himself to us.
कृष्ण को हम तभी देख सकते हैं जब वो अपनी इच्छा से हमें दर्शाते हैं.
By no power of our own do we have access into the realm of the absolute truth.
हम अपनी शक्ति से परम तत्व में नहीं पहुंच सकते.
In fact, however much we cultivate knowledge, perform tapasya, or even chant the names of God, through these processes, Krishna cannot be attained.
चाहे हम कितना ज्ञान ले लें, तपस्या कर लें, चाहे भगवान का नाम भी ले लें, लेकिन इन सारी तरीकों से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते.
Krishna says in Gita that as one approaches me, ye yatham prapajjante tam stathaiva vachamyaham mamavatmanu vartante manushya parata sarvasya. As one approaches me, as one surrenders to me, I reveal myself accordingly.
भगवान गीता में इस श्लोक में बताते हैं कि जो जैसे मेरे प्रति समर्पण करता है मैं उसको वैसे ही इनाम देता हूँ.
So according to the extent in which the living being aspires to please the Lord reveals himself.
तो जिस तरह से यह जीवात्मा भगवान को प्रसन्न करता है उसी तरह भगवान अपने आप को दर्शाते हैं.
Originally, in our natural condition, we are all the eternal servants of Sri Krishna.
Hamari swabhavik sthiti hai Sri Krishna ke nitya das.
Jivara swarupoi Krishna nitya das. But unfortunately, due to ahankar, due to the false ego, We are all trying to lord it over material nature.
लेकिन मिथ्या अहंकार की वजह से हम यहाँ प्रकृति के स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं.
We are trying to present ourselves according to the illusion of our misconceptions.
हम अपने आप को जो है अपनी माया के जो कंसेप्ट्स हैं उसके अनुसार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
We want to present ourselves in a nationalistic way. That I am Indian or I am American or I am African or I am Chinese or I am Russian.
हम अपने आप को देश के आधार पर भारतीय, अमेरिकन, चाइनीज या रशियन मानते हैं.
Or we want to present ourselves according to our particular religion. I am a Hindu or a Muslim or a Jew or a Christian or a Jain.
या हम अपने धर्म के अनुसार हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम या जैन बताते हैं.
Or we want to present ourselves according to our sex. I am male or I am female.
या अपने आप को हम पुरुष या स्त्री मानते हैं.
Or according to our particular caste designation.
या अपनी जाति के अनुसार अपने आप को मानते हैं.
Or according to our educational qualifications.
या हमारी शिक्षण की योग्यता के अनुसार.
Or according to the category of our particular income.
या हमारी कैसी जो है आय है उसके अनुसार.
I am very wealthy, I am very poor, I am very powerful, I am very weak. In this way, everyone wants to present themselves in the mire of illusion.
तो इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को माया के संबंध से पहचानता है.
But in essence, we only have one designation, that we are all the humble servants of the Supreme Lord.
लेकिन सार रूप से देखा जाए तो हमारा एक ही जो है शीर्षक है और वो है कि हम भगवान के दास हैं.
As long as we present ourselves before God in any other way, He will hide Himself just as we are hiding ourselves.
और अगर हम भगवान के सामने किसी दूसरे रूप में पेश आते हैं तो भगवान अपने आप को छुपा देंगे जैसे हम अपने आप को छुपा रहे हैं.
Although He is everywhere, He is within us, He is outside of us, He is in between every atom. We cannot see him. It is not because he is hiding from us, but it is because we are hiding from him, and he is only reciprocating according to how we approach him.
और हालांकि भगवान सबके अंदर हैं, हर एक अणु में हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहे क्योंकि हम अपने आप को उनसे छुपा रहे हैं और वो भी हमारी भावना के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं.
As long as we consider that our essential position is not that we are the eternal servants of the Lord. Due to identifying ourselves with a false conception, we are not willing to surrender everything to Krishna. We want to hold back. We want to be the enjoyer.
जब तक हम अपने आप को नित्य दास नहीं मानते, तब तक हम जो है समर्पण नहीं करना चाहते. हम भोक्ता बनना चाहते हैं.
Therefore, it is not that Krishna is hiding from us. It is that we are hiding from him behind our false ego.
तो ये नहीं है कि भगवान हमसे छुप रहे हैं बल्कि हम अपने मिथ्या अहंकार से भगवान से छुप रहे हैं.
And he allows us to hide behind this cloud of ahankar and therefore he cannot be seen.
और वो हमें ये परमिशन देते हैं जिससे कि हम अपने आप को मिथ्या अहंकार से छुपा दें और फिर उनको ना देख पाएं.
In the Ramayan of Sri Valmiki Muni there is a beautiful narration of the first meeting of Shri Hanumanji and Lord Shri Ramchandra.
Shri Ramayan Valmiki dwara likhi hui usme ye varnan aata hai ki kaise pehli bar Hanuman ji Shri Ramchandra ji se milte hain.
This took place just at the foot of the Rishyamukha mountain in Kishkindha Kshetra.
Ye ghatna jo hai Kishkindha Kshetra mein Rishyamukha parvat ke jo hai the chot parvat ke niche hui.
There is a famous place which is called Pampa Sarovar.
ये एक मशहूर स्थान है जिसे पंपा सरोवर कहा जाता है.
Beautiful, beautiful lake. Valmiki Muni describes how the waters were crystal clear, and there were innumerable beautiful, fragrant lotus flowers growing, and there were all nice swans and ducks and auspicious birds, and around the bank were all auspicious trees. Such as palm trees and fig trees and mango trees and jackfruit trees.
तो वाल्मीकि जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे सरोवर में सुंदर पक्षी हैं और आसपास जो है बहुत अनेक प्रकार के सुंदर पेड़ हैं.
After Lord Ramchandra killed the mighty Asura, Kabanda, he assumed his original demigod body. This demon was given a very, very horrible body because he had offended one of the great gods. And he was given the benediction that when Lord Ramchandra, the Supreme Personality of Godhead, would come into the forest, he would slay this Rakshasa body, and upon burning his body, he would assume his original form as one of the devatas.
तो एक जो है कबंद जो है ये पिछले जन्म में जो देवता था उसको ये शाप मिला था ये कुरूप मिलने का और ये वरदान भी दिया गया था कि जब भगवान रामचंद्र जी आएंगे उसके शरीर को जलाएंगे तब उसको जो है उसका मूल स्वरूप देवता का प्राप्त हो जाएगा
So after Ram and Lakshman killed this Kabanda, Kabanda, after they put his body on the fire and it was just about to burn, he assumed his original form. And he explained to Ram that Sita, you will find her if you make alliance with the great monkey chieftain Sugriva. To find him, you should go to this most beautiful, beautiful, refreshing lake called Pampa Sarovar.
तो कबंद ने जब उनके शरीर को जलाया जा रहा था उसके बाद प्रकट होकर बताया कि सीता को पाने के लिए आप जो है पंपा सरोवर के पास जाकर सुग्रीव से मित्रता करें।
So when Ram, Chandra, and Lakshman arrived, carrying their bows and their arrows, they looked so beautiful, charming, but at the same time they looked like the most powerful tigers amongst men.
तो राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण लेकर पहुंचे और बहुत सुंदर लग रहे थे और उसके साथ ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी लग रहे थे।
So when the spies of Sugriva happened to notice them, and Sugriva saw them from distance, he became very worried that his great enemy brother Bali had sent them to kill Raman or to kill he and his associates.
तो जब सुग्रीव को समाचार मिला उसके दूतों के द्वारा तो उनको बहुत चिंता हो गई क्योंकि लगा कि शायद बाली जो है उन्हें मारने के लिए आए हैं।
The Prime Minister of Sugriva was Hanuman Ji.
तो इनके प्रधानमंत्री हनुमान जी थे।
Hanuman was very wise.
बहुत बुद्धिमान थे।
He said, "I do not think that they have come to kill you. Let me go to see who they are."
तो हनुमान जी ने बोला कि मेरे को नहीं लगता वो मारने आए हैं मैं जाकर देखता हूँ कि वो हैं कौन।
I will disguise myself as a Brahmin. And in this way, I will ask and find out their true identity.
मैं ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा।
So Hanuman was a great devotee, but by the mercy of Sri Ramchandra, he was endowed with great, great mystic powers.
हनुमान जी महान भक्त थे और प्रभु रामचंद्र की कृपा से उनके अंदर बहुत योगिक सिद्धियां थी।
So he changed his entire form into that of a very gentle and learned Brahmin.
तो उन्होंने अपना रूप जो है बिल्कुल एक नम्र ब्राह्मण के रूप में बना दिया।
And he approached Ram and Lakshman and very cordially offered his respects.
तो राम और लक्ष्मण के पास आकर बड़े आदर पूर्वक जो है उनको प्रणाम किया।
But within this Brahmin's heart, there filled such a love. He could not understand why is it that I am feeling so much love, so much ecstasy. Upon seeing these two kshatriyas,
लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पास आने से उसके अंदर जो है प्रेम की भावना उमड़ रही थी। वो सोच रहे थे कि इन क्षत्रियों से मिलने से मुझे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है?
And the love was so much that after introducing himself, he could not contain his false identity. So he revealed himself. He said, "Actually, I am Hanuman." I am the messenger of Sugriva. Can you please tell me who you are?
तो इसके कारण जब अपने आप को छुपा नहीं सके और उन्होंने बता दिया कि वास्तव में मैं हनुमान जी हूँ सुग्रीव का संदेशवाहक हूँ और आप बताइए कि आप कौन हैं?
He said, "I don't know who you are, but I'm feeling so much love, so much devotion in you. Please tell me who is your identity."
तो वो बोले कि मुझे ये नहीं मालूम कि आप कौन हैं लेकिन मुझे आपके प्रति इतना प्रेम प्रतीत हो रहा है आप कृपया बताइए कि आप हैं कौन
And Lakshman introduced that this is Lord Sri Ram, the son of King Dasarath, and I am his younger brother Lakshman,
And we have entered into this forest of Pampara Sarovar looking for the great king Sugriva to make alliance to help find goddess Sita.
तो लक्ष्मण जी ने परिचय दिया कि ये दशरथ नंदन राम है, मैं इनका भाई हूँ और हम जो है ढूंढ रहे हैं सुग्रीव को उनसे दोस्ती करने से जिसे सीता को खोज सकें।
So Hanuman became very much embarrassed. He fell to the ground and offered his prostrated obeisances, began to weep. He said, "My dear Lord, after all these years, you who are the worshipable Lord of my life and my heart, I approached you and I did not even recognize you. I did not even offer you proper respects. Why could I not understand that you are, why did I need an introduction?"
तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर के प्रणाम करके जो है बोलने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं जो इतने सालों बाद अपने जो हृदय के जो आराध्य देव है उनसे मिला और फिर भी उनको पहचान नहीं सका।
I have worshipped you throughout my life. From my birth, I've been chanting your holy name. And now, the crest jewel of all my desires are fulfilled. I have your darshan, and I could not even understand who you are. Why is this?
वो बोलेगी पूरे जिंदगी भर मैं आपकी आराधना करता रहा और आपका नाम लेता रहा और सब मेरी इच्छाओं की पूर्ति आपके दर्शन के रूप में हुई, फिर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, ऐसा क्यों हुआ?
श्री राम told him, "Because you appeared to me disguised as a Brahmin, not revealing your true self, therefore I would not reveal to you my true self."
तो श्री रामचंद्र जी ने यही जवाब दिया, क्योंकि आप जो है वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए, इसीलिए मैंने भी जो है अपना सही रूप आपको नहीं दर्शाया।
Until you gave up that false conception, that false presentation of yourself, you could not see me as I am.
तो जब तक आपने ये जो अपनी मिथ्या भावना को नहीं त्यागा, तब तक आप मुझे अपने सही रूप में नहीं पहचान पाए।
But as soon as you revealed yourself as my eternal servitor, Hanumanji, I reveal that I am your eternal lord, Sri Ram, standing before you.
लेकिन जैसे ही आपने अपनी स्थिति जो है हनुमान के रूप में अपने नित्य दास के रूप में बताया, उसी तरह उसी समय मैंने भी अपने आप को श्री रामचंद्र जी के रूप में परिचित कराया।
This is the position of all of us. We are all the eternal servants of the Lord, but we are all presenting ourselves to the Lord under some false designation. Therefore, we cannot see him standing before us.
और ये हम सब की स्थिति है, क्योंकि हम तो वास्तव में भगवान के दास हैं, लेकिन हम अपने आप को मिथ्या कुछ और ही मान रहे हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं पहचान पाते।
Because factually, Krishna, as it is explained here, he is within and without everything.
क्योंकि वास्तव में तो जैसे इस श्लोक में बताया गया है, कृष्णा तो हर एक चीज के अंदर हैं।
He is within our heart. If we try to be dishonest with the Lord within our heart, if we try to cheat him, Krishna says in Gita, "I am the best cheater."
वो हमारे हृदय में ही हैं, और अगर हम भगवान को धोखा जाना देना चाहें जो हृदय में हैं, तो गीता में भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखेबाज भी मैं ही हूँ।
He sees everything we do, he hears everything we say, he knows everything we think. We cannot hide anything from Krishna.
हम उनसे कुछ नहीं छिपा सकते, चाहे हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब उनको मालूम होता है।
But if we try to justify our sense gratification and hide it from the super soul, the result simply is that he hides himself from us.
लेकिन हम अपने इंद्रिय तृप्ति के कारण जब परमात्मा से कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, इसका फल होता है कि वो अपने आप को हमारे से छुपा देते हैं।
But Krishna is also in the heart of every living being, and he's also in and between every atom.
कृष्ण तो हर प्राणी के हृदय में हैं और हर अणु के बीच में भी हैं।
How we present ourselves to his creation is how we present ourselves to him.
और उसी तरह से उनकी सृष्टि को सामने जैसे हम पेश आते हैं, उसी तरह उनके सामने पेश आ रहे हैं।
If we present ourselves to the people of this world by some external superficial designation, then we will not see Krishna anywhere in this world.
अगर हम यहाँ दुनिया के लोगों को किसी और बाहरी रीति रिवाज से अपने आप को पेश आते हैं, तो हम भगवान को कहीं नहीं देख पाएंगे।
But if we give up this egoistic dress and simply present, "I am the insignificant, humble servant of the Lord. I have come to serve." And we announce this wherever we go, whoever we meet, then we will see Krishna everywhere and in everyone.
लेकिन अगर हम ये मिथ्या भाव को छोड़कर अपने आप को इसी तरह पेश करें कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो हम सब जगह पर और सब में कृष्ण को देख पाएंगे।
Krishna is only known through this process.
कृष्ण इसी तरीके द्वारा जाने जा सकते हैं।
हनुमान जी such a great pure soul, but factually the original essence of every living being is the eternal servant of the Lord.
हनुमान जी तो एक बहुत महात्मा हैं, लेकिन वास्तव में हर जीव का स्वभाव है कि भगवान की नित्य सेवा करना।
Even if we are proud of attached to being a Brahmin or being very learned, even if we want to portray ourselves as being very religious and spiritually advanced person, even this is an ego which will create a cloud of illusion that blocks our vision of the Supreme Lord.
अगर हम अपने आप को ब्राह्मण या विद्वान या भक्ति में आगे बढ़ा हुआ मानते हैं तो वो भी एक माया का बादल पैदा करता है जिससे हम भगवान को नहीं देख पाते।
Krishna reveals himself to those who are of a humble heart.
जो नम्र हृदय के होते हैं उन्हीं के सामने भगवान दर्शाते हैं।
Who know no one else except him.
जो उनके अलावा और किसी को नहीं जानते।
Who know no other position except his servant.
वो उनकी स्थिति के अलावा और कुछ नहीं जानते।
To that person with that consciousness, Krishna reveals himself everywhere and in everything.
इस व्यक्ति जिसकी जैसी चेतना है उसको भगवान सब जगह पर दर्शाते हैं।
Krishna says in Gita, for one who sees me everywhere and everything in me, for him I am never lost, nor is he ever lost to me.
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो मेरे को सब में और सब में मेरे को देखता है मैं उससे कभी नहीं दूर होता और न वो मेरे से कभी दूर होता है।
कृष्णा, it is described that how he hides himself by the curtain of yoga maya. Naham prakash saravasya yoga maya samavrata mudhoyam nabijanatil. Krishna says that this curtain of maya covers those who are unintelligent.
Krishna Bhagwan kehte hain maya ka parda jo hai jo kam buddhi wale hain unko dhak deta hai.
Who want to lord it over material nature.
Jo prakriti ka swami banna chahte hain.
Prahlad Maharaj was only a child of 5 years old, yet he was seeing Krishna everywhere and in everything.
Prahlad Maharaj to 5 varsh ke balak the lekin wo sab mein Shri Krishna ko dekh rahe the.
Because he was innocent and he was simple.
Kyunki wo bahut hi saral swabhav ke the.
He simply accepted, Krishna, I'm yours.
उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्णा तुम्हारा ही हूँ।
That is all that is required.
और इसी की आवश्यकता है।
Great, great, great yogis, after years and years and years of practicing and developing even great powers, they cannot understand what is Krishna.
योगी कई साल जो है तपस्या करने के बाद जो शक्ति प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण को नहीं समझ सकते।
Why? Because they think that they are great possessors of powers.
क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे में बहुत ज्यादा शक्ति है।
They have lost the simplicity and the innocence of the heart.
उनके अंदर हृदय की सरलता नहीं रह जाती।
It is said that one must be like a child to understand Krishna.
ऐसा कहा जाता है कि भगवान को समझने के लिए हमें बालक के समान होना चाहिए।
A child is simple and innocent and has natural faith.
बालक सरल होता है और उसके अंदर स्वाभाविक श्रद्धा होती है।
In every situation of life, a child is remembering his parents.
हर स्थिति में वो अपने माता पिता को स्मरण करता है।
As soon as there's danger, he remembers his parents.
जैसे ही खतरा आता है उसको अपने माता पिता का स्मरण आता है।
As soon as there's something good, he wants to give it to his parents.
और कोई अच्छाई होती है तो वो अपने माता पिता को देना चाहता है।
This is the nature of a small child.
यही बालक का स्वभाव।
Completely dependent and completely under the control of the thought of his parents.
पूर्ण रूप से जो है माता पिता पर ही निर्भर रहना।
Because he's at an age where he just doesn't know anything else or anyone else.
उसकी ऐसी उम्र है कि वो और कुछ जानता ही नहीं है।
We are all Krishna's children.
हम कृष्ण के बालक हैं।
अहम बीज प्रतापिता। He is the father of everyone. But due to false pride, we have forgotten this.
वो सबके पिता हैं, लेकिन मिथ्या अहंकार के कारण हम इस बात को भूल गए हैं।
And this simple, innocent approach to the Lord has been covered.
और ये जो सरल भावना से भगवान के पास आना है, वो ढक गया है।
And we complicate our lives with so many illusions.
और हम अपने जीवन को जो है कई प्रकार के माया से जो है अस्तव्यस्त कर देते हैं।
So really, Krishna consciousness, Sanatan Dharma, is for those who are very simple in heart.
तो वास्तव में कृष्ण भावना या सनातन धर्म सरल हृदय वाले लोगों के लिए है।
Who reawaken an innocence in a faith where we are always in bad times. We naturally, like a child, automatically run to Krishna.
जिनमें वो श्रद्धा है कि जब बुरी स्थिति आती है तो कृष्ण की ओर दौड़ते हैं।
And when things are good, whatever we get, we automatically just run to show it to Krishna.
और जब स्थिति अच्छी होती है तो हम भाग कर कृष्ण को दिखाते हैं।
Have you seen little child? Whenever they get something good, what's the first thing they want to do? They want to show it to their parents. Look what I have.
अपने बालकों को देखा होगा, जब उन्हें कोई भी अच्छी चीज मिलती है वो अपने माता पिता को दिखाते हैं, देखो ये क्या मेरे पास है।
So everything good should bring us to run to Krishna to show him.
तो जो भी अच्छी चीज हमारे अंदर आए वो हमें कृष्ण को दिखानी चाहिए।
And all the difficult times we should run to Krishna for shelter.
और जब मुश्किल आए तो उनका चरणों का आश्रय लेना चाहिए।
In this way there's no difference between good and bad.
इस तरह से अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं रहता।
They are both just different wonderful processes of running to Krishna.
ये दोनों जो है अद्भुत तरीके हैं कृष्ण की ओर दौड़ने के लिए।
And this is what it means to transcend the dualities of material nature.
यही कहा जाता है कि द्वंद्वों से ऊपर उठने का।
It does not mean that we become so hard-hearted that we cannot understand that these are difficulties and these are easy times, or this is pleasurable or this is painful. We experience these things.
ये कठोर हृदय नहीं हो जाता कि हम पता ही नहीं चले कि ये जो है मुश्किल है या आसानी है, हमें इसका अनुभव तो होता ही है।
As long as we are in these bodies, we have to experience these.
जब तक हमें शरीर में है, तो ये अनुभव होगा ही हमें।
But according to Gita, the person who has transcended the dualities of nature, in any case, he does the same thing.
तो गीता के अनुसार जो द्वंद्वों से ऊपर उठा है, वो हर स्थिति में वही कार्य करता है।
He runs to Krishna.
वो कृष्ण की ओर दौड़ता है।
With a glad and grateful heart.
और वो खुशी से जो है और भगवान को धन्यवाद देता है।
The good times, the hard times, there is no difference because they all bring us closer to Krishna.
चाहे अच्छी स्थिति हो या बुरी हो, उसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों में ही कृष्ण के करीब आते हैं।
Therefore, a devotee does not discriminate.
इसलिए भक्त जो है वो अंतर नहीं मानता।
He is thankful in every situation.
वो हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है।
And because he is thankful in this childlike way, He sees Krishna everywhere.
और क्योंकि वो बालक के समान धन्यवाद देता है, इसलिए वो हमेशा कृष्ण को देखता है।
He sees Krishna in everything.
हर चीज में कृष्ण को।
This is practical.
और ये जो है ये व्यवहारिक है।
Anyone can do it.
और कोई व्यक्ति कर सकता है।
If you want it.
अगर आपकी इच्छा हो तो।
God helps those who help themselves.
भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की अपने आप की मदद करते हैं।
If we want something, we have to be willing to work for that.
अगर कुछ चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी।
If we're not willing to make sacrifice, that means we do not really want.
अगर हम त्याग नहीं करना चाहते, इसका मतलब हम चाहते नहीं हैं।
People make so much sacrifice in this world just for a little money.
इस दुनिया में लोग सिर्फ थोड़े पैसे के लिए कितना त्याग करते हैं।
Because they want money.
क्योंकि वो पैसा चाहते हैं।
But when it comes to spiritual life, how much sacrifice is people willing to make?
और जब आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न उठता है, तो कितना त्याग करना चाहते हैं?
So Krishna, he sees how much sacrifice you're making for everything else. He wants to see how much you're making sacrifice for him.
Krishna भगवान देखते हैं दूसरी चीजों के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, फिर वो सोचते हैं कि आप उनके लिए कितना त्याग कर।
We work so hard. We're willing to undergo so many aggravations and disturbances and problems. To build up some empire within our home, within our business, within our profession, to get pride, to get prestige, to get a famous name, to give wealth and dignity to our children on a material platform for some extra money. We're willing to work so hard and make so many sacrifices and endure and undergo all pains and aggravations for that. But when it comes to our spiritual life, when it is convenient, we do it nice.
हम भौतिक जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मान के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कोई भी दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए जब सुविधा मिलती है तभी हम करते हैं।
कृष्ण इज विदिन एंड विदाउट, ही इज वाचिंग।
कृष्ण भगवान जो है हमारे हृदय में है और वो सब कुछ देखते हैं।
यू मेकिंग सो मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर दीज थिंग्स, हाउ मच फॉर मी।
भगवान देखते हैं कि दूसरी चीजों के लिए इतना त्याग कर रहे हैं, मेरे लिए कितना।
इफ इट्स एनी लेस देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, I will hide.
अगर आपका त्याग थोड़ा भी कम है दूसरी चीज से, तो मैं अपने आप को छिपा दूंगा।
He is hiding behind the cloud of ego that we have created.
वो उस बादल के पीछे छुपे हुए हैं जो हमारे मिथ्या अहंकार का हमने ही बनाया है।
It's not that God is running from us, we are running from him.
ये नहीं है कि भगवान हमारे से दूर दौड़ रहे हैं, हम भगवान से दूर दौड़ रहे हैं।
He's standing right in front of us and we're turning our back to him saying where is he?
हम वो तो हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन हम अपनी पीठ दिखाकर जो है पूछ रहे हैं कहाँ हैं वो।
And he's saying turn around, and all the sages and all the scriptures are saying turn around, but you're not willing to turn around, but you blame God. Why are you not before me?
और संत ऋषि और शास्त्र कहते हैं कि आप अपनी पीठ मोड़ दीजिए, लेकिन हम नहीं मोड़ते, और फिर बोलते हैं कि भगवान क्यों नहीं आप हमारे सामने आते।
This is the problem.
यही समस्या।
How do we turn around? We must make Krishna first.
वो कैसे हम पीठ अपने भगवान की ओर मोड़ते हैं? भगवान को पहला प्रायोरिटी दें।
We must be willing to show him that we want to know him, we want to love him by the degree of our sacrifice for him.
हम अपने त्याग के द्वारा हमें बताना है कि हम उनको जानना और उनसे प्रेम करना चाहते हैं।
So many pravachans, so many lectures describing Krishna's Leela, Ram's Leela, Bhagavad Gita philosophy, but you will never understand the real goal until we're willing to make this complete sacrifice.
आप चाहे कितने प्रवचन सुन लीजिए भगवान की लीलाओं के बारे में लेकिन जब तक हम पूर्ण रूप से त्याग नहीं करना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेजो वेदान्तकृत वेदवेदेवचाहम कृष्ण सेज बाय ऑल द वेदस एम आई टू बी नोन येट वी आर हियरिंग द वेदस सो मेनी टाइम्स व्हाई आर वी नॉट नोइंग कृष्णा
भगवान कहते हैं कि वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं फिर हम वेदों कई बार पढ़ते हैं फिर भी कृष्ण को क्यों नहीं जानते
बिकॉज़ वी आर स्टिल ट्राइंग टू होल्ड सम प्रायोरिटीज बिफोर हिम
क्योंकि हम उनसे पहले किसी चीज को आगे रख रहे हैं
The Bhagavad Gita is spoken to Arjuna who is a warrior. Krishna is telling him to fight.
भगवत गीता अर्जुन को बोली गई जो योद्धा है और भगवान उनसे कह रहे हैं कि आप लड़ाई करिए.
Sacrificing your everything in life to Krishna does not necessarily mean leaving behind your prescribed duties in this world.
त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दें.
What does it mean?
इसका अर्थ क्या है?
It means to work in the spirit of Arjuna.
अर्जुन की भावना में कार्य करें।
That whatever we do, it is directly a sacrifice for Krishna.
हम जो भी करें वो कृष्ण के लिए त्याग है।
And we show him that to associate with his devotees, to chant his holy name, to read the shastra, to live a pure life.
और हम
This is first and foremost.
और ये सब चीज़ें भगवान का नाम जप करना भक्तों का संग करना शास्त्र का अध्ययन करना ये हमारे जीवन में प्रथम स्थान होने चाहिए
If we're not willing to do these things, Krishna will not take us seriously.
अगर हम ये करने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान हमें गंभीरता से नहीं ग्रहण करेंगे
And then with this spirit of devotion that is derived through this process, we do our work in a detached spirit.
और हम इस भक्ति भावना से जो है अनासक्त होकर अपना कार्य करें
What does it mean to be detached?
अनासक्ति का क्या अर्थ है?
It means that from the beginning to the end, we are planning on giving whatever we have to Krishna.
इसका मतलब शुरुआत से लेके अंत तक हम ऐसी योजना बनाते हैं कि सब कुछ
If from the beginning or end of any of your work, you're thinking this is mine, you're attached.
अगर शुरुआत या अंत के बीच में हम सोच रहे हैं कि ये मेरा है, तो इसका मतलब हम आसक्त हैं.
And ultimately, your work will not bring you freedom or happiness. It will bring you, in the end, bondage and pain.
और ऐसे कार्य से जो है तुम्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होगी बल्कि बंधन और दुख प्राप्त होगा
सो हाउ टू बी डिटैच्ड
तो अनासक्त कैसे होना
टू बी डिटैच्ड मींस दैट व्हाटएवर वी आर यूटिलाइजिंग द फ्रूट्स ऑफ आवर वर्क फॉर कृष्णा इज डायरेक्टली बीइंग सर्व्ड
तो वो इस तरह से है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका फल जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए
यू आर पेइंग रेंट फॉर अ होम इज इट योर होम और इज इट कृष्णास होम
हम घर के लिए किराया भरते हैं वो कृष्ण का घर है या आपका घर है
Put the deity of Krishna in your home.
इसलिए घर में भगवान का विग्रह रख.
Then it's Krishna's home.
वो कृष्ण का घर.
But then you have to also treat it like Krishna's home.
और उसको कृष्ण के घर जैसे व्यवहार.
All food that is cooked should be what he wants and offer to him.
सब भोजन जो है जो वो चाहते हैं और उनको भोग लगाना.
And every day the family should come together to bow down to him and chant his glories.
सब परिवार को एकत्र होकर उनको प्रणाम करके उनके गुण गान.
There should be no sinful activities in God's
home. कोई पाप नहीं होना चाहिए.
In this and invite sadhus and other guests to come. To be with Krishna.
और साधु और जो है दूसरे मेहमानों को बुलाकर कृष्ण के पास बुलाएं।
I once knew a very great sadhu in Vrindavan, and he was just a very poor man. And he had deities in a little closet in a hallway of somebody else's house, and he never left there because he had no one else to take care.
मैं गरीब ब्राह्मण को जानता हूँ वृंदावन में जिनके पास एक छोटी सी मूर्ति थी और वो किसी के मकान में ही रहते थे और छोड़ते नहीं थे उनको
And whenever anyone would come, he would be so happy. He would just give them everything he had.
जब भी कोई आता, वो इतने प्रसन्न होते कि सब कुछ जो उनके पास होता, वो दे देते.
And people would say, "No, you should not give this. You are a poor man. We do not need." He said, "No, no, you must have everything."
वो सब बोलते, आप तो गरीब हैं, आप रखिए. वो तो नहीं नहीं नहीं, आप रखिए, वो दे देते.
He said, "Because you are Krishna's friend, but I am only his servant."
वो देते कि आप जो है कृष्ण के जो है मित्र हैं मैं तो सिर्फ दास हूँ।
Anything that anyone who comes to Krishna's house must be his friend.
और जो भी कृष्ण के घर में आ रहा है वो उनका दोस्त होगा।
I am only his servant.
मैं उनका सिर्फ दास हूँ।
If I make his friends happy, then he will be very happy.
अगर मैं उनके मित्रों को प्रसन्न करता हूँ तो वो प्रसन्न हो जाएंगे।
So this should be our spirit.
यही हमारी भावना होनी चाहिए।
That when people come to the house, we should think these are Krishna's friends coming to visit him.
अगर कोई हमारे घर में आए तो सोचना चाहिए कि कृष्ण के मित्र आए हैं उनसे मिलने के लिए
I am his servant.
और मैं तो उनका दास
So let me treat them with all respect and dignity and let them be with Krishna.
और मैं
let them enjoy with Krishna.
और मैं उनको आदरपूर्वक व्यवहार करूं जिससे वो कृष्ण के साथ आनंद ले सके
And our family, they are all Krishna's friends, every family member.
और हमारे परिवार का हर एक सदस्य
Let me bring them all closer to Krishna.
हमारे परिवार के हर एक सदस्य जो हैं कृष्ण के दोस्त हैं और मैं उनको भी कृष्ण के करीब ले आऊं
If your family is like this, if your home is like this, then all the wealth that you put into your family and home is for Krishna.
अगर आपका ऐसा परिवार है तो सारा धन जो आप परिवार के लिए दे रहे हैं वो कृष्ण के लिए हो जाता है
That is bhakti, that is detachment.
यही भक्ति और यही अनासक्ति है
हाँ
हाँ सेम वही
No Hindi. I know one word in Hindi. Rupa Goswami has explained to us, Prapancha katiya bhujya hari shambhani vashtana mumukshami parityago vairagam palgukatyate That spiritual vision means to see how everything is the property of Krishna. To see Krishna in everything And to utilize everything for Krishna.
तो रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब यह है कि सब कुछ कृष्ण से संबंधित देखना और सब कुछ कृष्ण की सेवा में ही लगाना
One time we asked our Guru Maharaj, our devotees, Srila Prabhupada, you are talking about seeing Krishna in everything. How do we see Krishna in the dead objects of matter of this world?
एक बार हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद से पूछा कि आप कृष्ण में सब सब में कृष्ण को देखने के लिए कह रहे हैं तो ये जो जो जड़ चीज़ें हैं उसमें कैसे कृष्ण देखें
प्रभुपाद सेड यू सी ओवर देयर ऑन माय डेस्क व्हाट डू यू सी ऑन माय डेस्क
तो वो बोले कि हमारे इस पे जो चेयर टेबल है उस पर आप क्या देख रहे हैं
आवर गॉड ब्रदर सेड श्री प्रभुपाद आई सी योर ग्लासेस
बोले वो आपका चश्मा देख रहे हैं
हाँ यू What are you thinking when you see these glasses?
उन्हें चश्मा को देखने पर तुम क्या सोचते हैं?
Even if I am 10,000 miles away, when you see these glasses, what do you think?
अगर मैं 10,000 मील दूर भी हूँ, तो अगर आप चश्मा देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं?
I think these are Srila Prabhupada's glasses.
तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये प्रभुपाद जी के चश्मा हैं।
Guru Maharaj said, "You see, you are seeing me in the glasses."
तो बोले देखिए इस तरह से आप चश्मे में भी मेरे को देख रहे हैं
इन द सेम वे भोक्ताराम जगतपसम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शान्तिमिच्छति एवरीथिंग इज कृष्णस प्रॉपर्टी
उसी तरह से सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है
दैट इज द फैक्ट
यही सत्य है
इफ वी सिंपली सी दिस इज कृष्णस माइक्रोफोन दिस इज कृष्णस हारमोनियम दिस इज कृष्णस बॉडी व्हेन वी सी आवर वाइफ दिस इज कृष्णस daughter when we see our husband this is krishna's son when we see our children these are krishna's children when we are see our home this is krishna's home when we get a paycheck we say this is krishna's money
to is tarah se sab cheeze hai chahe microphone ho ya ghar mein pati patni bacche ho ya paisa ho wo sab shri krishna ka hai aisa manna aisa samajhna chahiye
in this way we see krishna everywhere and in everything
is tarah se har jagah par aur har cheez mein krishna ko dekh sakte hain
And you use everything for Krishna in this way.
और इस तरह से सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में ही उपयोग
And this is an honest life.
ये एक ईमानदारी का जीवन है
What does it mean to be honest?
ईमानदारी का अर्थ क्या होता है
It means to live according to the truth.
इसका मतलब कि सत्य के अनुसार जीवन बिताना
So-called honesty in this world is all dishonesty.
ये तथाकथित जो ईमानदारी है दुनिया की वो तो बेईमानी है
Honor amongst thieves.
वो बोले जैसे चोरों में जो आदर होता है
What is honor amongst thieves? The example is given is that so many thieves work together to rob bank and then they take all the money and they go into some secret hiding place and they say now let us divide this up honestly.
जैसे कुछ चोर लोग होते हैं कि संपत्ति को चोरी करके फिर एक छुपी स्थान में जाकर कहते हैं कि अब इसको ईमानदारी से आपस में बांट लेंगे
There's no such thing as honesty.
इसमें कोई ईमानदारी है ही नहीं.
Amongst them, there are honesties, but the principle that they're basing their life on is dishonest.
आपस में चाहे लगे ईमानदारी है लेकिन उनका सिद्धांत ही गलत है इसलिए वो ईमानदारी नहीं हो सकती.
And if the police break into their secret hideout and say you're all under arrest, if they say no, 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 we are dividing it honestly.
अगर पुलिस उनके वहाँ पर आकर उनको पकड़े और वो कहे कि नहीं 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 हम तो यह सब ईमानदारी से बांट रहे हैं.
That is so-called honor in this world.
ये दुनिया का जो है आदर है.
Everything is God's, and we're exploiting what belongs to God. And we live and we exploit it in moral terms and we think we are very pious and honest.
Sab kuch bhagwan ka hai aur hum jo usko le lete hain naitik roop se aur hum sochte hain ki hum imandar hain.
But you're thieves. Lekin we're all thieves.
Lekin aap chor hain, hum sab chor hain.
That is the problem.
Yahi samasya hai.
Makhan chor, Krishna is also a thief.
Krishna bhagwan bhi chor hai, wo makhan chor.
Because we are part of him, we are also thieves. Makhan chor, huh? But the difference is when Krishna steals, he owns everything. He actually is the rightful claim. When Krishna steals, he's only stealing our hearts for the purpose of placing them back in their original position of truth.
वास्तव में जब कृष्ण चोरी करते हैं वो तो हमारे हृदय की चोरी करते हैं जिससे उसको वास्तविक सत्य में स्थित कराने के लिए.
So we must live in such a way that we are honest before God.
हमें ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि हम भगवान के आगे सच्चे रहें.
And when we reveal ourselves before Him in this way, then He reveals Himself before us in His eternal form, which is Satchit Ananda.
अगर हम इस तरह से रहते हैं तो अपने सच्चिदानंद रूप में हमें दर्शाते हैं.
He reveals himself from within and without.
बाहर से और अंदर से वो दिखाते हैं.
And this experience is our original natural consciousness or Krishna consciousness.
और यही अनुभव जो है हमारे वास्तविक चेतना है या कृष्ण चेतना है.
And in order to achieve this realization, the Supreme Lord has appeared to teach us. Lord Gauranga Mahaprabhu, that by associating with sincere souls who are devotees of the Lord in an honest and genuine way, and by avoiding the association of people who are too much materialistic and greedy, then we will gain a taste to chant the holy names.
और वो बता रहे हैं कि इस तरह से जो है ऐसे लोगों का संग करना जो भगवान के भक्त हैं और जो अभक्त हैं उनके संग से दूर रहना इससे हमें जो है नाम आस्वादन हो.
One time a devotee asked Chaitanya Mahaprabhu, how do I become a pure servant of God?
एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि भगवान का शुद्ध सेवक कैसे बन सकता हूँ.
This was his reply, asat sanga tyaga avaishnavachar, which means associate with saintly people and do not associate with greedy materialistic people.
Unka yahi jawab tha ki sadhu sangha kariye aur jo bhautik vyakti hai unse dur rahiye.
And through this process learn how to always chant the names of the Lord.
Aur is tarah se seekho ki kis tarah se hamesha bhagwan ka naam jap kirtan kare.
We must make this the priority of our life.
Yahi hamare jeevan ka pratham sthan hona chahiye.
Orchestrate everything around this principle of associating with saintly people, avoiding the association intimately with materialistic people and learning the process through this way of chanting God's names.
Yahi hamara siddhant hona chahiye ki bhakton ka sang karna aur bhautik logon ke sang ko dur rakhna aur is tarah se bhagwan ka naam jap karna.
Of course in this world we have just in our occupation and our schools in our practical services we have to deal with so many materialistic people, so many unscrupulous people that cannot be avoided.
वैसे इस भौतिक जगत में जब तक हम रहते हैं तब तक तो संसारी लोगों से थोड़ा बहुत संग करना ही पड़ता है उसको रोका नहीं जा सकता.
But that will not affect you if you keep holy company during your social life.
लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर जब आपका सामाजिक जीवन होता है तब आप भक्तों का संग करें.
One of our devotees asked a few days ago that he was a doctor. Adi Keshav, he asked this question. He's a skin specialist.
तो ये प्रश्न जो आदि केशव प्रभु ने पूछा जो कि ये चमड़ी के विशेषज्ञ.
Being a skin specialist is a very Actually, it's the whole society should be going to him because everyone has what's called skin disease.
तो ये विशेषज्ञता के लिए तो पूरे समाज को उनके पास जाना चाहिए क्योंकि सबके अंदर ये बीमारी है.
Skin disease means we think we're the skin.
ये बीमारी का अर्थ है कि अपने आप को ये चमड़ी मानना.
We forget we're the eternal soul.
हम भूल जाते हैं कि हम नित्य आत्मा हैं.
So actually, if this society was in the right direction, Adi Keshava would have hundreds of millions of patients.
अगर समाज सही दिशा में होता तो आदि केशव प्रभु के जो सैकड़ों जो है पेशेंट्स मरीज
trying to become cured of this skin disease.
और वो सब इस बीमारी से मुक्त हो जाते.
And what is the medicine?
और दवाई क्या है?
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
So he was asking, how, when we are in this world, we have to deal with so many unscrupulous, terrible people. Terrible in the sense that they're very sinful and very forgetful of God and very much making propaganda toward sense gratification. How to deal with these people and not be affected?
तो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि संसार के जो पापी लोगों के बीच में रहते हुए कैसे उनसे प्रभावित ना हों?
So we explained through the process of inoculation.
तो महाराज ने बताया कि किस तरह से इंजेक्शन लगाने के तरीके से कर सकते हैं.
Through inoculation, you become immune to certain diseases.
जिससे बीमारी के प्रभाव से आप दूर रह सकें.
But if the inoculations are not taken regularly, then you will be subject to the disease.
लेकिन अगर इस तरह से नियमित रूप नहीं करेंगे तो हमें फिर से बीमारी हो जाएगी.
So if we are associating with saintly people, whenever the social time is there,
जब भी सामाजिक जीवन हो तब हम भक्तों का संग करें.
After the hours at work, how do we enjoy our life?
यानी जब कार्य का समय हो जाता है पूरा उसके बाद कैसे हम जीवन का आनंद लेते हैं?
Do we go to the cinema? Do we turn on the television?
क्या हम सिनेमा देखने जाते हैं या टेलीविजन देखते हैं?
Do we go to some social club?
या किसी क्लब में जाते हैं?
Or do we go to where the sadhus are chanting the holy names and where they are discussing Krishna katha?
या वो साधुओं के पास जाते हैं जहां वो भगवान नाम का जप कर रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं?
Through this process, we become so spiritually surcharged that whatever takes place within our life, we will not forget Krishna.
इससे हमारे में इतनी शक्ति आती है आध्यात्मिक कि चाहे कुछ हो जाए हम कृष्ण को नहीं भूलेंगे.
So do not hide yourself from Krishna.
इसलिए अपने आप को कृष्ण से मत छुपाओ.
Krishna says that he is the supreme truth. He exists both internally and externally, in the moving and the non-moving. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. And he is ready to reveal himself to everyone and anyone who simply wants to see him.
तो कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो सबके अंदर हैं, सबके बाहर भी हैं, और वो उसी को दर्शाने के लिए तैयार हैं जो अपने उनको देखना चाहता है.
And Krishna makes himself most readily visible through the sound of his name.
और सबसे आसान तरीका है उनके नाम का स्वर.
When we learn to see Krishna within the sound of his name and experience him within his name, then we will perceive him everywhere and in everything.
अगर हम कृष्ण को अपने नाम रूप में पहचान लें तो फिर हर चीज में हम उसका अनुभव कर सकेंगे.
Therefore, the Yuga Dharma, the recommended process in this age of Kali Yuga, is to simply come together to glorify the holy names. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
God has many names.
भगवान के कई नाम हैं.
But of course, whatever name is most dear to our heart, in whom God is revealing himself through our heart, naturally we will be able to inspire people most with that name.
लेकिन जो नाम हमको सबसे ज्यादा प्रिय है उसी से हम दूसरे लोगों को प्रेरित कर पाएंगे.
We are not speaking of a sectarian process. We accept all religions in all authorized processes of God consciousness, which essentially teaches the necessity of chanting the holy name.
हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम जो है सब धर्मों को स्वीकार करते हैं जो कि भगवान के नाम लेते हैं.
But by the grace of Gurudev, we have all become very crazy for Radha and Krishna.
लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हम सब राधा कृष्ण के लिए पागल हो गए.
So our goal in life is that everyone becomes crazy for Radha and Krishna.
हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग जो है राधा कृष्ण के लिए पागल हो जाएं.
And tonight we want to see everyone become crazy for Radha.
इसलिए आज रात हम यही देखना चाहते हैं कि सब राधा कृष्ण के लिए पागल.
Because after all, you have to be crazy for something.
क्योंकि अंततः किसी न किसी चीज के लिए तो पागल होना ही पड़ता है.
So better it's Krishna.
ज्यादा अच्छा है कि वो कृष्ण के लिए हो.
And the holy name awakes that craziness of the heart for Krishna.
और पवित्र नाम से जो है हृदय की पागलपना जागृत हो जाता है.
It's called prema or love.
इसको प्रेम या कहते हैं.
So let us all chant together.
इसलिए सब साथ में कीर्तन.
Lord Chaitanya Mahaprabhu has taught that when people sincerely, with honest hearts, come together to chant the holy names, the spiritual world descends.
Chaitanya Mahaprabhu ने बताया है कि जब लोग जो है एक साथ भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो आध्यात्मिक जगत जो है अवतीर्ण हो जाता है.
तत्र तिष्ठमि नारद यत्र गायन्ति मद् भक्ता. Krishna told Narada ji that you will not find me in Vaikuntha, you will not find me in the hearts of the yogis, you will find me wherever my devotees come together to chant my holy names.
Bhagwan Krishna Narad se kehte hain ki na mujhe yogiyon ke hriday mein milenge, main to sirf wahi milunga jahan par jo mera bhakt kirtan karte hain.
So this world is in great need of Krishna.
Ye duniya mein jo hai Krishna ki bahut aavashyakta hai.
Let us be merciful.
Isliye hame kripalu hona chahiye.
Call upon Krishna.
भगवान को पुकारे कृष्ण को पुकारे.
Everyone please rise.
लोग खड़े हो जाएं.